लघु वासुदेव मननम, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जीव के अंदर होने वाली जो ये सात चीजें हैं, आत्मा में आए हुए दुखों का निवारण कैसे हो और यह आया कैसे है, आने का पता लग जाए तो फिर उसको उसी रास्ते से भेजने का भी उपाय किया जा सकता है। और यदि ये आया कैसे है मालूम न हो तो फिर जाएगा कैसे, क्योंकि वो जो आया है ना वो जाने के लिए नहीं आया है, उसको तो हमें भगाना पड़ेगा। कुछ लोग तो आते हैं तो हम पूछ लेते भाई तुम कैसे आए, किस साधन से आए, दुख को क्या कहेंगे तू कैसे आया, तो वो कहेगा मैं अपने आप नहीं आया हूं, आपने बुलाया तब आया हूं। मैंने तुम्हें कैसे बुलाया, तो आपने जो कर्म किया था उसके अनुसार मैं आया हूं। अब कर्म को पूछेंगे भाई तू कैसे आया, तो वो कहेगा कि आपने जो है ना राग और द्वेष पूर्वक मुझे बुलाया। अब राग द्वेष से पूछेंगे तुम कैसे आए, तो कहेगा आपने अभिमान किया था इसलिए मैं आ गया। तो इस तरह से जब अज्ञान की बारी आएगी तुम कैसे आए, तो अज्ञान स्वयं कहता है कि हमें पता नहीं कि मैं कैसे आया। यही है अनादि, ईश्वर के संकल्प से होने वाला यह जो जगत है। सृष्टि को चलाने के लिए प्रभु ने क्या किया, ये अज्ञान रूपी तेल डाल करके संसार को चलाने का क्रम बनाया। अब हम लोगों को जब पता चला कि इसी अज्ञान की वजह से आत्मा के अंदर आरोपित आगंतुक जो दुख है, इससे हम लोग दिन रात दुखी हो रहे हैं, कैसे छूटे इससे, तो कहा अज्ञान तो हटेगा ज्ञान से। अब जिस संबंधी जो अज्ञान है अपने स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए स्वरूप को जानेंगे तो ये अज्ञान अपने आप हट जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आत्मा में जो दुख है वो आगंतुक है, फिर क्रम से चले जाइए। कई लोगों ने लिख भी लिया है, कुछ लोगों को मौखिक याद हो गया, अब तो 23 तारीख हो गई, 5-7 दिन और इसकी आवृत्ति चलेगी और ये ऐसा अपने अंदर कूट कूट करके भर जाए, जम जाए, तो बार बार काम में आएगा। मनन करने का उपाय है ये, श्रोतव्य श्रुति वाक्य भ्यो और मंतव्यश्च उपपत्ति भी, श्रुति वाक्यों का श्रवण होना चाहिए प्रतिदिन। जो आप श्रवण करते हो उसको फिर मनन कीजिए, कैसे, उपपत्ति भी युक्तियों के द्वारा। जो सुना जाता है उसी का मनन होता है, आपसे कोई कड़वी बात बोल देता है ना तो आप बार बार सोचते हैं क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा कहा। वैसे ही जब वेदांत श्रवण किया तो आपात ज्ञान ये तो हो ही गया कि मैं जीव रूपी जो शरीर रूपी उपाधि में होने से मैं जीवात्मा कहला रहा हूं, जिसका पहले दृष्टांत था घटाकाश महाकाश अलग अलग नहीं है, घटाकाश को भी महाकाश ही समझो तो आप ज्ञानी हो। और जब तक घटाकाश को आप महाकाश से अलग करके देख रहे हो भेद बुद्धि है, तो ये अज्ञान है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं होगा। इस प्रकार से आपात श्रवण होते ही जो मनन होता है वो युक्ति के द्वारा करना चाहिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाणों से वस्तु की सिद्धि होती है। प्रमाण हो गए वेद श्रुति और लक्षण हो गए युक्ति उपपत्ति। तो श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्यश्च उपपत्ति भी, और मत्वा च सततम ध्येयम, मनन करने के बाद लगातार उसी वृत्ति के प्रवाह में रहे। हम लोगों को अभी परेशानी क्या होती है ना, जो आगे चार कोटि में भेद किया ज्ञानी का, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरह, ब्रह्मविद वरीयान और ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो ब्रह्मविद वरिष्ठ में वृत्तियों की शून्यता होती है, वृत्तियों का अभाव होता है। और जो ये तीन हैं, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरह और ब्रह्मविद वरीयान, इनमें अभी वृत्ति है। तो वृत्ति होने के बाद ज्ञानी की अपनी वृत्ति है, तो उनके लिए अभी ऐसे कर्म होने चाहिए जो सबको शिक्षा मिले, जिज्ञासुओं को वेदांत सुनाए, ये सब उनके लिए नियम बनता है। जो वृत्ति शून्य हो गए वो विधि निषेध से ऊपर उठ गए। अभी तो हम लोगों को यहां सुनाया जा रहा है कि भाई जो इस कर्म की वजह से अभी दुख आया, इस कर्म से कैसे छूटना है, उस कर्म का स्वरूप क्या है। तो आगे की बात भी मैं पहले से थोड़ा थोड़ा इसलिए सुना देता हूं जिससे आपको आगे सुनने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अपने इस विषय पर जो अभी प्रसंग चल रहा है। तीन प्रकार के कर्म बताए थे, पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्र कर्म। उससे पहले उसके भी तीन तीन भेद किया था, उत्कृष्ट, मध्यम और सामान्य। अब ये जो मानसिक, वाचिक और कायिक, शरीर से होने वाले, वाणी से होने वाले, मन से होने वाले, जो ये तीन कर्म हैं, तीन तीन तीन, तीन त्रिका नौ, पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्र कर्म। मन से और वाणी से होने वाले कर्मों का स्वरूप क्या है, ये भी आप लोगों ने सुना। अब शरीर से जो पुण्य, पाप और मिश्र कर्म होते हैं वो आचार्य यहां बता रहे हैं। तीर्थ में स्नान करना, इलाहाबाद कुंभ में नहाना, ठंडी लगे तो क्या हुआ, एक बार नहा लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। नहाने से पहले कल को एक सज्जन मिले, बोले मैं बहुत छोटी उम्र का था तब हरिद्वार गया, गंगा जी में जनवरी के महीने में नहाया तो ऐसा लग रहा था कि अपने अंदर से सारे पाप बाहर निकल रहे। गर्म पानी से नहाने से पाप अंदर रह जाते हैं, ठंडे पानी से निकल जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, भावना है। लेकिन इतना जरूर है, एक बार डुबकी लगा लो ना, फिर डुबकी लगा के बाहर निकलो तो ठंडी कम लगती है। स्नान के बाद गर्मी लगती है और भोजन के बाद ठंडी लगती है। ठंडियों में जिसका अनुभव होगा आप देखना, प्राय लोग भोजन के बाद अलाव तापते हैं, आग तापते हैं, अरे भोजन किया ओ बहुत ठंडी लग रही है, और नहाने के बाद शरीर गर्म होता है। तो पुण्य तीर्थ स्नानम, पुण्य तीर्थों में स्नान करना, गुरु देवता नमस्कार, गुरुजनों का, देवताओं का, इष्ट देवों को नमस्कार करना, देव पूजा, ईश्वर की आराधना करना, प्रदक्षिणम, मंदिर की परिक्रमा करना, सज्जन दर्शनम, महापुरुषों का दर्शन करना, अच्छे लोगों को देखना। कभी कभी हम लोग शंका करते हैं कि आज पता नहीं किसका चेहरा देखा, दिन भर खराब गया दिन। अब वहां यदि आप आत्ममंथन करो तो बाथरूम में जाने के बाद शीशा में सबसे पहले हम अपना ही चेहरा देखते हैं, बाद में दूसरे को देखते हैं। तो वहां किसी दूसरे का नाम मत लगाना। तो सज्जन दर्शनम, त्याग, त्याग की भावना रखना। आज जिन महापुरुषों को हम लोग नाम गिनते ना, अच्छे थे, अच्छे थे, क्यों अच्छे थे, उन्होंने दुनिया को, संसार को अपना नहीं माना और हमेशा इस वृत्ति में रहे कि एक दिन छोड़ के जाना है। वही आदमी किसी के आंखों का किरकिरा बनता है जो यहां से सब कुछ समेट के ले जाने की कोशिश करता है, उससे सब चिढ़ते हैं। और जो पहले से ही पद्म पत्रम इवाम भसा की तरह रहे, भाई एक दिन छूटना ही है, उससे फिर सब प्रेम करते हैं। और ऐसे ही लोग इतिहास में उनका नाम आता है और ये सब महापुरुष हो जाते हैं जिनका स्मरण करने से भी पुण्य मिलता है। लोक अनुग्रह संचार, कहीं आना जाना पड़े, घूमना फिरना हो, उसमें भी लोगों के कल्याण करने की भावना रखो। बिना मतलब के मत घूमो, कहीं जाओ तो आपके माध्यम से लोगों को कुछ लाभ हो। इसी उद्देश्य से जो यात्रा आदि करते हैं ये भी एक शारीरिक पुण्य कर्म है। और बिना मतलब की घूमना हुआ उससे कुछ नहीं होगा। तो लोक अनुग्रह संचार, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो घूमना फिरना है, एवं इस प्रकार से आदि कर्माणी, और भी जो जो शुभ कर्म है, अच्छे काम है शरीर से होने वाले, ये सब के सब कायिकम पुण्य कर्म। ऐसे तो ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते भी गीता में आया है। प्राय सब एक ही बात होती है, थोड़ा अलग ढंग से कह देते हैं। तो शरीर से होने वाले पुण्य कर्म का स्वरूप क्या है, आचार्य ने बता दिया कि ये सब जो करते हैं ये शरीर से होने वाले पुण्य कर्म हैं। पर हिंसा, अपनी हिंसा नहीं दिया, पर हिंसा, परस्त्री संग, पराई स्त्री से संग करना, चोरियम चोरी करना, दुष्ट संग दुर्जनों की संगति करना, ये सब जो कर्म है शरीर से होने वाले, इसको पाप कर्म बोलते हैं। हिंसा शब्द जो है ना अपने आप में, दभनोति हिनस्ति इति दंभ। लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग पाखंड करते हैं ढोंग, ये पाखंड का मतलब ही होता है अपनी हिंसा करना। दभनोति दंभ, अमानित्वम अदम्भित्वम, तो अदम्भीपना क्या है, दंभ, बड़ा पाखंडी है उसको दंभ बोलते हैं। और अदम्भित्वम बताया ज्ञान के साधनों में, तो दभनोति हिनस्ति इति दंभ, हिंसा करना। कैसी हिंसा, कृतम च कारितम चैव अनुमोदितम। कुछ हिंसा हम लोग, कृत हिंसा जो स्वयं के द्वारा किया जाए, कुछ हिंसा होती किया नहीं आपने कराया दूसरे के द्वारा, सुपारी देके कराना, कह देना कि तू कर दे, वाणी से धन से आदि से कर देना, करा देना। कारित हिंसा, आपने किया भी नहीं कराया भी नहीं, किया किसी और ने और आपने कहा बड़ा अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था, ये जो अनुमोदन किया ना ये भी हमारे द्वारा ही हिंसा हो गई। जाने अनजाने में हम लोग बहुत सारे पाप कर बैठते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये जो हिंसा का स्वरूप है, ये सब शरीर से होने वाले पाप कर्म के अंतर्गत आते हैं। दुर्जनों के संग करेंगे, उनके पास कौन सी बात मिलेगी। एक कहीं पढ़ा था कि प्रेम जो है ना बड़ी कीमती चीज है, सस्ते लोगों से इसके पाने की इच्छा मत रखना। हाँ, जो हल्के लोग होते हैं ना उनसे आप प्रेम पाने की आशा मत करना। ये तो जिसके अंदर उदारता होगी, बड़प्पन होगा, वही आपको प्रेम देगा। जो लोग सोचते ना हम उससे प्रेम नहीं करते, हम किसी से प्रेम क्यों करें, यही उसका अपना हलकटपना है। हालांकि ये प्रवचन वेबसाइट में जा रहा है, पूरी दुनिया वाले सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई से तो हम नकार नहीं सकते उस, ये तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चाई है इस बात में। ब्राह्मण भोजनार्थम परोपद्रव, राम नाम जपना और पराया माल अपना, मेहनत करके कमाओ फिर किसी को खिलाओ या दो, उसमें आपको पुण्य मिलेगा। दूसरे के धन से दानी बनना, दूसरे की चीज खिला करके पुण्य कमाना, तब भी पुण्य उसी को मिलेगा जिसकी मेहनत का है उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप तो बीच में एक दलाल हुए, जो दलाली खाना चाहते हो। जिसके परिश्रम का है उसी को पुण्य मिलता है। हर चीज में ये नियम लागू होगा, आगे बताएंगे। देवालय निर्माणार्थम पर द्रव्य अपहार, मंदिर बना रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कोई हो बुरा न माने, क्योंकि कथा व्यास गद्दी की अपनी मर्यादा होती है, गाय के नाम पे या किसी दूसरे चीज के नाम पे धन लेना फिर उसको अपने लिए उपयोग करना बहुत बड़ा पाप है, हद से ज्यादा। कोई दे गाय के नाम से तो उसमें अपना भी मिला के गाय को खिलाओ, न कि उसमें से लेने की इच्छा रखो। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रायः हम लोग धार्मिक कार्यों के नाम से धन उठाते हैं और उसका उपयोग हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार रिश्तेदार के लिए करते हैं, तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। देवालय निर्माणार्थम पर द्रव्य अपहार, ये भी शरीर से होने वाले पाप हैं बता रहे हैं। लगता तो ये पैसा किसी ने दिया, हमने कहीं लगा दिया, ये कहीं न कहीं पाप रूप बन रहा है। उससे आगे एक बात कह रहे हैं कि प्रपाम स्थापयित्वा भृतकस्य अप्रदानम एव। कुआं खुदवाया, पुराने जमाने में तो कुएं खुदवा देते, आजकल तो प्याऊ लगा देते हैं। कुआं खुदवा करके मजदूरों की मजदूरी न देना, ये भी एक शरीर से होने वाला पाप है। जबकि हमने कुछ किया नहीं है, काम किया उसने, लेकिन हमने पेमेंट नहीं दिया ना, उनके मेहनताना उनका नहीं दिया, इससे भी पाप हो जाता है। तो प्रपाम मतलब कुआं, प्याऊ आदि समझ लीजिए। तो भृतकस्य, जो मजदूर हैं, सेवक हैं, उनको आपने मजदूरी नहीं दी, ये भी शरीर से होने वाले पाप हैं। तो मंदिर के नाम से धन तो लिया, लेकिन दूसरा अपना काम करा लिया, पुण्य भी हो गया पाप भी हो गया, दोनों मिले जुले रूप हो गए ना, ये मिश्र कर्म है। नाम है धर्म का और काम कर रहे हैं अधर्म का, नाम है किसी और के लिए लगा रहे और किसी चीज में, तो ये पुण्य और पाप दोनों हो रहे एक साथ, इसको मिश्र कर्म बोलते हैं। एवं आदि कर्माणि पुण्यानि च पापानि मिश्रीकृत्य कायेन अनुष्ठीयमानानि कायिकं मिश्रकर्म। तो तीन प्रकार के कर्म, मन वाणी और शरीर से होने वाले, ये संक्षेप में समझ लीजिए, हम लोगों के द्वारा दिन रात होते रहते हैं। इन कर्मों को कैसे नियंत्रण करना है, इससे कैसे बचना है, ये सब उपाय आगे आचार्य बताएंगे। एतानि त्रिविधानि अपि कर्माणि सम्यक विचारणीयानि। ये जो तीनों प्रकार के कर्म हैं, प्रत्येक व्यक्ति को भली भांति इसका विचार कर लेना चाहिए कि ये कर्म है कैसे, इसका स्वरूप क्या है। तो बोलते हैं विचारस्य फलम किम इति चेत, इसके विचार करके इसका फल क्या मिलेगा। कहते हैं इसका फल दो प्रकार का होता है, एक मुख्य फल और एक अवांतर फल। मुख्य के बाद जो दूसरा होता है उसको अवांतर, अवांतर मतलब दूसरा फल, वो कौन है, क्या फल है। इमानी त्रिविधानी कर्माणि त्रिविधै एव करणैहि क्रियन्ते, इन्हीं तीन करणों से ही हम लोग ये सारे कर्म करते हैं। जिन करणों से कर्म किया जाता है, उन करणों को, जो करण है उसको कौन प्रवृत्त करते हैं, आत्मा का तो इसके साथ कोई संबंध है नहीं, पहले बताया था, उसी को पुनः अभी दोबारा से कह रहे हैं कि आत्मा तु अयम आकाशवद असंगो निरंस परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप। आत्मा तो असंग है, आकाश की तरह निर्लिप्त है। इतनी बारिश होती है, आकाश कभी गीला होता है, देखा है, ये उसकी असंगता है। निरंस, आकाश का आधा टुकड़ा यहां हो आधा टुकड़ा वहां हो ऐसा भी नहीं, ऐसे ही आत्मा जो है ना सर्वथा आकाश में तो नीलिमा आदि दिख भी रही है थोड़ी बहुत, भले भ्रम के कारण ही सही, लेकिन आत्मा में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, निरंस होने के कारण। और परिपूर्ण है, परिपूर्ण का मतलब होता है जो चारों ओर से भरा हुआ हो, ठसाठस जो भरा हुआ होता है उसी को बोलते हैं परिपूर्ण। और चैतन्य स्वरूप है, इसलिए यह किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है आत्मा। लिंग पुराण का उदाहरण दिया कि आत्मा किसको बोलते हैं, ये श्लोक आप लोगों ने लिखा था पहले भी, वही याद हो रहा। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस् तेन च आत्मेति गीयते। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, जो व्याप्त करके रहता है, यद आदत्ते, जो सबको समेट करके उपसंहार करके रहता है, और यच्च अत्ति, अत्ति का अर्थ किया जागृत अवस्था में विषयों का उपभोग के द्वारा अपने आत्मा का जो साक्षात्कार करता है। हम लोग जो खाना पीना घूमना फिरना कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष आत्मा का दर्शन और कहां होगा? कोई है दूसरा उपाय? फिर श्रुति सुनते हो, पढ़ते हो, तो फिर मालूम पड़ गया, यत् चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यत् श्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्। सबका निषेध किया वहां पर, श्रोत्र, चक्षु, मन, बुद्धि, प्राण, इन सब के द्वारा क्या बताया कि बुद्धि निश्चय कर रही है, सबको मालूम है बुद्धि जड़ है, ये भी पता है, इसलिए बुद्धि से जो निश्चय किया जा रहा है उस बुद्धि को आत्मा मत समझो, बल्कि बुद्धि जिसके द्वारा निश्चय कर रही है उसको आत्मा मानो। आंखों से जो देख रहे हैं इस आंख को आत्मा मत समझो, बल्कि आंखें जिसकी सत्ता प्राप्त करके देखने में समर्थ हो रही है उसको ब्रह्म समझो। अब इससे ज्यादा सुस्पष्ट और क्या होगा? तो जो हम लोग खाना पीना कर रहे हैं, पूरे थाली भर का भोजन इससे अंदर चला जाता है, हाँ, थोड़े थोड़े ग्रास बना बना करके। इसलिए हवन में एक नियम है कि इतने इन दोनों उंगली के ऊपर जितने सामग्री आए ना उतने डालने का। मुझे लगता है हवन में भी लोग इतने सामग्री एक साथ वही डालते हैं जो क्या ढकोस के जो खाते हैं ना, उनको लगता है हवन भी ऐसे ही होता होगा मुट्ठी भर के। कितने जल्दी जल्दी लोग खाते हैं, मुंह में भरा लाओ ऐसा करते हैं। अरे आराम से खाओ, कहीं भागना है, कोई ट्रेन छूट रही है, लेकिन इतने जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कोई खाते में बुरा नहीं मानेंगे लेकिन ऐसा है। तो ये जो उदान वायु कंठ में, उदान कंठ देशस्थ हो, फटाफट मुंह के अंदर डाला और अंदर वो खींच लेता है, हाँ, देखो कुछ भी हो, और जब ये वायु काम न करे मुंह में डालो वापिस फेंक देते, तो जो अंदर लेवे और बाहर फेंक देवे दोनों काम उदान वायु से होते हैं। इसलिए अभी हम लोग स्वास्थ्य ठीक है, सलाइवा मुंह में बन रहा है, लार बन रही है, रस आता है, भोजन हजम हुआ, भूख लगी तो चाहता है, जो डाला अंदर खींच लेता है। और जब ये सिस्टम बंद हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी भोजन में, कितनी भी बढ़िया चीज बनी हो रही, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, नहीं जाने वाला, अंदर वो ले ही नहीं रहा है। तो ये जो है विषयों के उपभोग जो हम दिन रात करते हैं, इसके माध्यम से आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। इसने कह दिया यच्च अत्ति, अत्ति मतलब खाना, वो उपभोग करना। तो आपनोति, आदत्ते और अत्ति, ये तीनों काम जो करे नित्य निरंतर जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो रहे, उसी को आत्मा कहा गया है। ये लिंग पुराण का उदाहरण आचार्य ने दिया, 18 पुराणों में लिंग पुराण का नाम आता है। आत्मशब्दस्य अर्थ, तस्मात् न एकम अपि कर्म चिदाकाश स्वरूपम स्पृशति। हम लोग अपने शरीर से जो भी कर्म करते हैं, ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, लिपायमान नहीं होता। संशयम विहाय दृढ़े न अनुभवे न अवस्थानम मुख्य फलम। शरीर अपना काम कर रहा है, आत्मा की इससे कोई लेना देना है नहीं, इस भावना से जो अपने आप में स्थित रहते हैं, इस अनुभव को जो हमेशा अनुभूति में लाते हैं, ये है इस कर्म को जानने का मुख्य फल। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा होना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञाने सति अपि त्रिविध करणम अपि पूर्ण कर्मणि एव स्थापितव्यम्। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी जो जो कर्म किया जाए उन पूर्ण कर्म में ही अपने को लगाना चाहिए। शरीर से तीनों कर्म होने की संभावना है, मन से और वाणी से पूर्ण कर्म, पाप कर्म और मिश्र कर्म। अब जब समझ में आ गया शास्त्र सुनने के बाद कि कौन सा पुण्य कर्म है और कौन सा पाप कर्म है, तो समझदार व्यक्तियों को हमेशा पुण्य कर्म में अपने आप को लगाना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। पूछा ना कि इस कर्मों को जान के फायदा क्या है, फल क्या है, तो मुख्य फल तो यह है कि आत्मा इससे असंग है, इसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, इस भावना में स्थित रहना तो मुख्य फल है। और यदि अभी आत्मा की तरफ दृढ़ता नहीं है तो ईशावास्य उपनिषद इसी तरह से तो है, पहला मंत्र में ही बता दिया ज्ञान मार्गियों के लिए, और जो उसके अधिकारी नहीं है अथवा जिनको उस मार्ग में चलने में कठिनाई हो रही है, कुर्वन नेवे है कर्माणी बता दिया कि फिर वह शुभ कर्म पूर्ण कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक की जीने की इच्छा रखे। जीना तो हम सब चाहते हैं, तो ऐसे जीवन जीते हुए हमसे कभी अशुभ कर्म ना हो जाए, पाप कर्म ना हो जाए, मिश्र कर्म भी लगभग बचना ही चाहिए इससे। करो एक तरफ करो, पूर्ण कर्म करो जरूर। और अभी सत्संगी बन गए हम लोग, शास्त्र भी सुना, लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल है ना, वो पहले से जो झूठ बोलना, झगड़ा करना आदत जो पड़ी हुई है वो इतने जल्दी नहीं छूटती। और जब हम लोग कभी किसी से बोलते भी नहीं, देखो सत्संग करते हैं अभी भी झगड़ा करते हैं, वो क्या समझते हैं कि झगड़ा करना हमारा अधिकार है, सत्संगियों का नहीं है। तो ऐसा करके तो हमको दबाएंगे ना, फिर उनको कभी कभी याद दिला देना चाहिए कि हम सत्संग तो करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर, हाँ कमजोर मत समझना हमको। इसके लिए आप लोगों को उस दिन बताया था, भागवत का उदाहरण दिया, न्यायपूर्वक दुखों को सहन करना तितिक्षा है, भगवान ने जो उद्धव जी को कहा। और अन्याय कोई करे वहां यदि आप सहन करते हो, वो तितिक्षा नहीं, वो पाप ही है। हम लोग बड़े समझदार चालाकी करते हैं ना, अपने ऊपर बात आती तो हम छोड़ने को तैयार नहीं होते। अरे उसके साथ हो रहा, होने दो, वो बुरा बन रहा है बनने दो, अपने को बुरा नहीं बनना है। ऐसे लोग सैकड़ों आदमी को संकट में डाल देते हैं अपने बुरा न बनने के चक्कर में। सुस्पष्ट बोलो ना, बात खत्म। कल आपने लोगों ने नहीं सुना, सज्जन किसको बोलते हैं, दुर्जन किसको बोलते हैं। मन वाणी और शरीर से जो एक हो, जो सोचो वही बोलो और वही करके दिखाओ, ये सज्जन का लक्षण है। और दुर्जनों का लक्षण बता दिया, बोलते हैं कुछ, सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। ये न कदाचिदपि पाप कर्मणि, कभी भी पाप कर्म में नहीं लगना है, पूर्ण कर्म ही करना है, ये इसका अवांतर फल है। जो दो फल बताए कर्म को जानने का, जो पूर्ण कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, मिश्र कर्म क्या है, तो एक तो अपने ज्ञान में स्थित हो जाए, कर्म का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, यह है इसका मुख्य फल। और यदि कर्म करना ही है तो केवल पूर्ण कर्म करना है और दो कर्म हमें नहीं करना है, ये अवांतर फल है। यथा दृष्टांत दे रहे हैं, कदली पोषकस्य कदली फलम मुख्य फलम। केले के पेड़ लगाते हैं ना हम लोग, तो हमको केले के पत्ते से मतलब कम होता है, वहां उद्देश्य होता है केला खाना, केला पाना। लेकिन उस पौधे को बचाना, केले के पत्तों की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। पेड़ अच्छे रहेंगे, पत्ते अच्छे होंगे, तभी तो केला मिलेगा। अब आपको हमें तो केला से मतलब है, पत्ता खराब हो रहा है होने दो, एक एक पत्ता लोग मांगते जाए, काट काट के देते जाए, तो केला उसमें लगेगा ही नहीं। तो उद्देश्य तो है केला पाना, लेकिन केला की रक्षा करते हुए पेड़ पत्ते आदि की भी रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो ये दृष्टांत है। यथा कदली पोषकस्य, कदली फलम मुख्य फलम, केला पाना तो मुख्य फल है, मुख्य उद्देश्य है, लेकिन केले के पत्ते और केले के पेड़ की रक्षा करना ये अवांतर फल है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। तथैव त्रिविध करण कृत कर्म ज्ञानस्य अपि पूर्वोक्त फलद्वयम् इति ज्ञेयम्। इन करणों के द्वारा होने वाले कर्मों का भी दो फल है, मुख्य फल और अवांतर फल, ऐसा जानना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात आ रही है। जैसे हम लोग चाहते हैं ना, वेदांत सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, भागवत रामायण वेदांत की कथा, लेकिन अपने जो पूर्व जन्मों के साथ जो संबंध आया हुआ है, ऐसे परिवार में रह रहे हो आप, परिवार में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके अच्छे कार्य में सहयोग करें, प्रायः सब टांग खींचने वाले होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जैसे देवता लोग चाहते हैं ना मोक्ष में विघ्न डालते हैं, यहां तो शुभ कर्म करने में ही लोग विघ्न डालते हैं, घर वाले। अब घर वाले की बात नहीं मानो, कल पराधीन हो जाओगे, वही घर वाले आपके काम में भी आएंगे, तो उनके साथ कैसे आपको न्यूट्रल होकर के रहना है। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, कोई ऐसी बात ना हो कि कल हमें वो उलाहना दे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बात क्यों मानूं, इससे भी बचना है। उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। परिवार में रहना है ना, परितः वारयति निवारयति इति परिवार, ऐसा बोलते, अर्थ किया कि जो चारों ओर से हटा करके निवारण करे, अपने पास ही रहे, अपने पास रखे, वही तो परिवार है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर लोगों के बीच में थोड़े रहेंगे हम, अपरिचित लोगों के बीच में, कोई सो तो नहीं रहे। ननु अंभसा पद्म पत्रम इव कर्मणा ज्ञानी न लिप्यते। पद्म पत्रम इवांभसा, कैसा है गीता के पांचवा अध्याय, ये श्लोक आप लोगों को पहले भी बुलवाया था, पता नहीं कैसे बोलते हैं, यहां वाले तो अच्छे बोलते होंगे, लेकिन संस्कृत नहीं आने से थोड़ी कठिनाई तो होती है। पश्यन् श्रृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। आगे वर्तन्ते इति धारयन्, वर्तन्त इति धारयन्, कोई वर्तन्ते ही है, ई है ना आगे, इसलिए वर्तन्त बन जाता है। जैसे गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज, वहां भी ई है। तो गुणा गुणेषु तीसरा अध्याय है और उसी से ये बिलोंग करता है पांचवें अध्याय। आज हम आपको तीन बात बता देते हैं, लघु वासुदेव मन्नव में तो नहीं है, लेकिन संसार में तीन तरह के लोग हैं, मोक्ष पाने वाले, स्वर्ग जाने वाले और संसार में रहने वाले। तीनों के लिए भगवान ने गीता में तीन जगह बातें कही है। गीता का प्रत्येक अध्याय का परस्पर भी संबंध है कुछ न कुछ। तो पांचवें अध्याय में शक्नो तिहैव सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। कैसे सुखी रहना है, उस परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है वही सुखी रहेगा, स युक्त ससुखी, जो उससे युक्त मतलब योग युक्त हो गया, जुड़ गया, वो सुखी रहता है। सयुक्त ससुखी नर कैसे, तो काम क्रोध उद्भवम बेगम, शरीर का अपना धर्म है, काम भी सताता है क्रोध भी आता है, लेकिन इन दोनों से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, उद्वेग, काम क्रोधोद्भवम बेगम, उद्भवम मतलब उत्पन्न हुआ, काम और क्रोध के द्वारा जो उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, वो जो वेग है, गति, जो एकदम शरीर में गुस्सा आना, एकदम काम से पीड़ित होना, जो व्यक्ति इसको इह एव सोढ़ुम शक्नोति, इसी जन्म में इसी लोक में रह करके जो सहन करने का अभ्यास करता है, अंग्रेजी में नहीं बोलते कोई काम करवाना हो, हाँ कैन यू डू दैट, यस आई कैन, और नहीं करना होगा तो आई कांट, आई कैन नॉट, हाँ विलिंग पावर जब बोलते ना, यस आई विल आई कांट, तो शॉर्टकट में बोल देते हैं लोग, यहां पर भी बोलो यस और नो, इसके लिए भगवान कह रहे शक्नोति, शक्न कैन के अर्थ में है ना, कर सकते हैं, यदि यही कर सकते हो तो इह एव अस्मिन लोके एव, इह तो शक्नोति इहैव, इह एव शक्नोति इहैव यह सोडुम, जो साधक है जो सहन करता है, कब तक करना है तो शरीर विमोक्षणात् प्राक्, जब तक शरीर न छूट जाए उससे पहले तक व्यक्ति को इससे सावधान रहना चाहिए। लोग समझते हैं 60-70 साल में बुढ़ापा आएगा तो काम तो नहीं रहेगा, लेकिन क्रोध तो रहता ही है ना, वो तो मरते दम तक रहता है, और काम भी नहीं रहता ऐसा नहीं समझना चाहिए, कामना रहती है, इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। वयसी गति कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार, बुढ़ापे में आकर के नष्टे द्रव्य कह परिवार, पैसा खत्म हो गया तो वही है, पैसे हैं तो हाउ आर यू, पैसे नहीं है तो हु आर यू, अपने भीमसेन जोशी जी गाते थे, सुना होगा नहीं, सब पैसे के भाई, सब पैसे के भाई, जब तक पैसा जेब में हो तो लोग बड़ाई करे, अपना पैसा निकल गया तो क्या, ये बहुत अच्छा भजन शास्त्रीय संगीत में गा रहे हैं भीमसेन जोशी जी, सब पैसे के भाई है तो हाउ आर यू, नहीं तो हु आर यू वाला मामला होता है, तो नष्टे द्रव्य कह परिवार, पैसा खत्म हो गया, अपने परिवार अपने ही बच्चे आपको नहीं देखते छोड़ देते हैं, इसलिए हर लोग सोचते हैं कि भाई भविष्य निधि, हाँ म्यूचुअल फंड क्या बोलते उसको, हाँ म्यूचुअल, तो म्यूचुअल कौन होगा जो स्वयं में मैच्योरिटी होगी तभी तो करेगा म्यूचुअल, तो ये तो शरीर के निर्वाह की बात है, और प्रेमपुरी में आने के बाद तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसी एफडी बनने जा रही, इसका ब्याज कभी न घटने वाला है, और ब्याज चाहिए भी नहीं अपने को, जमा हो रहा है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करो। वयसी गति कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार, अवस्था आने पर तो ठीक है, बुढ़ापा आ गया, अब बोले चलो जी बद्रीनाथ केदारनाथ माला जपो, कुछ हो नहीं रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, न बैठा जा रहा है न कुछ, जब शरीर में ताकत थी तब तो भाग रहे थे इधर से उधर, तो अवस्था आने पर विकार का अभाव हो जाए उसको साधना नहीं बोलते, साधना तो उस समय होनी चाहिए थी जिस समय काम सता रहा था और आपने उसका दुरुपयोग नहीं किया, सुसके नीरे कह का सारा, जैसे तालाब में पानी सूख जाए तो उसको कोई तालाब थोड़ी बोलते हैं, वो गड्ढा कहलाता है। तो जब कामना है ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं, तो अब ये कहे कि मैं तो कामनाओं से रहित हो गया, ये एक फालतू की बात है। शकनो तिह एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। कभी भी ये मन में घमंड न करे कि हमने काम को वश में कर लिया, क्रोध को वश में कर लिया। जब तक शरीर न छूट जाए तब तक ये कहीं पर भी पलटवार कर सकता है। इसे आचार्य भगवान गीता में अर्जुन को निमित्त बना करके ये उपदेश दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ये तो हो गया जो मुमुक्षु लोग हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले लोग, वह इस तरह से साधनों को अपनाए। अब इससे जो दूसरा उपाय है, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षव। ये कहां का है? कहां पर? गीता सातवां अध्याय। बलम बलवताम चाहम, बलवानों के अंदर, ताकत वाले लोगों के अंदर जो शक्ति है वह मैं ही हूं, भगवान बोल रहे हैं। बलम बलवताम चाहम, लेकिन कैसा बल हूं मैं? काम राग विवर्जितम। राग द्वेष से छूटेंगे तभी तो कर्म से छूटना है। नहीं, जहां लघु वासुदेव मरणम में जो प्रसंग चल रहा है कि कर्मों से छूटने का उपाय क्या है, मुख्य फल अवांतर फल भी आपने सुना कि मुख्य फल तो है कर्म से निर्लिप्त होकर के पद्म पत्रम इव, जो गीता पांचवें अध्याय में है कि कुर्वन अपि न लिप्यते पद्म पत्रम इवाम भसा। जल में कमल का पत्ता रहता तो है, दिखता तो है, पानी के अंदर है, लेकिन जैसे पत्ते को तोड़ के निकालो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लगी होती। कभी तोड़ के देखना कमल पत्ते को। तो जैसे वो जल में रह करके भी उससे निर्लिप्त है। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने अंदर रखना बुरा है। भगवान ने भेजा है, ये गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ उपहार है, मनुष्य जन्म मिला है, इसका सदुपयोग करिए तो आप प्रसन्न रहोगे। क्यों जन्म दिया, क्यों संसार में भेजा, ऐसा बोल के फायदा क्या होने वाला है? और जिस दिन जाएंगे तो वही हम हंसे और जग रोए, ऐसा निकल गए आराम से कि चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी। ऐसी चदर ओढ़ के निकल जाओ यहां से, बीच में चक्कर में मत पड़ो। बलम बलवताम चाह च अहम, बलवानों के अंदर जो बल है, लेकिन वो कैसा है? तो काम राग विवर्जितम बलम च अहम, कामना से युक्त जो बल का प्रयोग होगा वह भी बंधन का कारक है। राग, काम और राग दोनों से वर्जित रहित होना चाहिए। और धर्म अविरुद्ध, विवाह करना जरूरी है। प्रजापति के जो ये संसार है इसको बढ़ाना है, उस उद्देश्य से संतान उत्पादन करना अच्छी बात है। ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के अविरुद्ध है। तो धर्माविरुद्धो भूतेषु, प्राणियों में होने वाले जो ये बल आदि है, कामना है, राग है, यदि धर्म के विरुद्ध नहीं है तो मेरा ही स्वरूप समझना। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षव। हे भरतवंशी, भरतों में भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं ही हूं, और जो बल कामना राग से रहित है वह भी मैं ही हूं। कामना और राग से युक्त बल का मेरा स्वरूप मत समझना, और धर्म के विरुद्ध जो कामना है वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो लोग इस प्रकार से कामना आदि का प्रयोग करते हैं उनको स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष तो नहीं मिलेगा लेकिन स्वर्ग मिलेगा। लेकिन तीसरा जो है ना वो बहुत भयंकर है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, द्वारम नाशनम आत्मनः, कामक्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत् काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम् विद्येनम् इह वैरिणम्। तीसरा अध्याय है ना, तो काम एष क्रोध एष तीसरा अध्याय और त्रिविधम नरक सेदम सोलहवां अध्याय आसुरी संपत्ति। तो ये जो है त्रिविधम नरकस्येदम, ये जो तीनों प्रकार की जो तीन चीजें हैं, नरकस्य इदम द्वारम, नरक का ये द्वार है। कहां मोक्ष वाली बात थी पांचवें अध्याय में, स्वर्ग वाली बात थी सातवें अध्याय में, और नरक जाने वाले के लिए कह दिया कि ये तीनों नरक का द्वार है। क्यों? क्योंकि जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उनको नरक ही जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम आत्मनः नाशनम, आत्मा को नष्ट करने वाले ये द्वार है, अर्थात आत्मज्ञान से वंचित कर देते हैं। आत्मा का तो नाश होता नहीं, तो आत्मनाश का मतलब यह समझ लेना चाहिए आत्मज्ञानी नहीं बनने देता, आत्मज्ञान के लिए हमें वंचित कर देता है। इसलिए काम क्रोध तथा लोभ, कई जगह तो ऐसा भी आता है कि क्रोध फिर भी अच्छा है, काम फिर भी अच्छा है क्रोध से, क्योंकि कामना में व्यक्ति केवल स्वयं पीड़ित होता है और क्रोध में दोनों होते हैं आमने सामने वाले। आप भी गाली गलौज करोगे, शरीर लाल होगा, बीपी हाई हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, और सामने वाले को भी गुस्सा आएगा। कैसे लड़ते हैं लोग, क्या महाभारत होता है। बॉम्बे में तो टाइम ही नहीं मिलता होगा लड़ने का, फोन पे मोबाइल पे लड़ते हैं आजकल, प्रॉक्सी वार है ये सब, पीछे से वार करना बाय मैसेज, कानाफूसी फोन पे, पता चला ऐसा हुआ, सामने कोई पड़ता ही नहीं, फोन पे चल रहा है। तो जब हम फोन से इतने कनेक्टेड हैं संसार के लिए, वो परमात्मा ने तो फोन भी नहीं है, कुछ रिंग भी नहीं करना है, बैठ जाओ आराम से, वही कनेक्शन जुड़ गया। लेकिन ये वायरलेस कनेक्शन, हम मोबाइल लेस कह सकते हैं क्योंकि वायरलेस तो मोबाइल भी है, लेकिन ये मोबाइल लेस कनेक्शन है, सीधे हृदय से परमात्मा से जुड़ जाओ, जो हृदय पुंडरी का मध्य दहर विद्या उपासना में सब आता है कि कैसे वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तीन प्रकार के लोग हैं, अब आप आत्ममंथन करना कि हम किस रास्ते में चल रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। सिद्धांत के हिसाब से जो कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त होकर के रहते हैं ना, वह इस संसार को कर्म साक्षी, शरीर से क्रियाकलाप हो रहे लेकिन उस साक्षी भाव में रह करके सब देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या ये बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। बोल देने के बाद तो सुधारना मुश्किल है, इसलिए बोलने से पहले ही वाणी की साधना करने का तरीका भी बताया है। अब यहां इसका प्रसंग नहीं, इसलिए मैं उस बात में जाना नहीं चाहता हूं, सुनना हो तो फिर मैं बाद में बता दूंगा। कृतकृत्य इति सिद्धांति तत्वात् तस्य ज्ञानिनो अज्ञानिनः इव पुण्य कर्म एव अनुष्ठेयम् इति नियमः कथम् इति चेत्। बोलते हैं कर्म के बारे में जो आपने कहा, तो ज्ञानी के लिए तो कोई कर्म लागू होता नहीं, ये तो अज्ञानियों के लिए है, तो ज्ञानी को भी ऐसे रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो आप बता रहे हो, तो दोनों एक ही समान हो गए, ये कैसे भला। बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, ज्ञानियों में भी बहुत सारे भेद हैं। वह कौन कौन है? तथापि ब्रह्मविद ब्रह्मविद वरह ब्रह्मविद वरीयान ब्रह्मविद वरिष्ठ इति तेषां मध्ये ब्रह्मविद वरिष्ठ एव विदेह मुक्त। विदेह मुक्त कौन कहलाते हैं? जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है। बाकी तीन जो है वो अभी जीवन मुक्त है, अभी विदेह मुक्त तो नहीं है, अर्थात शरीर रहित होना तो विदेह मुक्ति का एक स्वरूप है ही, लेकिन वृत्ति शून्यता भी एक विदेह मुक्ति का ही स्वरूप है। शरीर में रहते हुए भी, जिसमें तैलंग स्वामी आदि का जो उदाहरण सुनते हैं और जो विचार चंद्रोदय में तुरी जगह अवस्था जो बताई है, उस स्थिति में चले जाना, ये ब्रह्मविद वरिष्ठ इन तीनों की अपेक्षा अलग हैं और ये तीनों बाकी लोगों की अपेक्षा अलग है। अब इन दोनों में तीन और चौथा, इसमें क्या भेद है, क्या इनका स्वरूप है, कैसे रहना चाहिए, ये सब अब आगे आचार्य बताएंगे। ये सुनेंगे आप कल। हरिओम।